श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 13 श्लोक संख्या 8, 9, 10, 11 और 12 अनुवाद विनम्रता दंभहीनता अहिंसा सहिष्णुता सरलता प्रामाणिक गुरु के पास जाना पवित्रता स्थिरता आत्मसंयम इंद्रिय तृप्ति के विषयों का परित्याग अहंकार का अभाव जन्म मृत्यु वृद्धावस्था तथा रोग के दोषों की अनुभूति वैराग्य संतान स्त्री घर तथा अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्ति अच्छी तथा बुरी घटनाओं के प्रति संभाव मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति एकांत स्थान में रहने की इच्छा जन समूह से विलगाव आत्म साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकारना तथा परम सत्य की दार्शनिक खोज इन सबको मैं ज्ञान घोषित करता हूँ और इनके अतिरिक्त जो भी है वह सब अज्ञान है। तो आज का हमारा विषय है विद्वान कैसे बने। तो विद्वान का संबंध है विद्या से या ज्ञान से। तो हम यहां पर भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ज्ञान की जो परिभाषा देते हैं उसे पढ़ रहे हैं। तो आप लोग यहां पर विद्यानगर में हैं तो अपेक्षा की जाती है कि आप यहां पर विद्या ग्रहण करके विद्वान बनने जा रहे हैं। तो ये जो हमने पढ़ा तो आप जरा सोचिए और बताइए कि इनमें से कौन से विषय हैं जो आपके यहां कॉलेज में पढ़ाए जा रहे हैं। सुने आप लोगों ने सब विषय नहीं सुने अभी जो हमने बताए हाँ नहीं सुने नहीं नहीं अभी सुने आपने यहाँ पर कॉलेज में नहीं सुने हाँ मतलब वहाँ नहीं पढ़ाए जाते। कोई भी विषय आपको पढ़ाया जाता है इनमें से इतने सारे हमने विषय ज्ञान के बताए। एक बार दोबारा बोलते हैं ध्यान से सुनिए और बताइए कौन सा इनमें से विषय है जो आपके कॉलेज में आपको बताया जाता है। विनम्रता दंभहीनता अहिंसा सहिष्णुता सरलता प्रामाणिक गुरु के पास जाना पवित्रता स्थिरता आत्मसंयम इंद्रिय तृप्ति के विषयों का परित्याग अहंकार का अभाव जन्म मृत्यु वृद्धावस्था तथा रोग के दोषों की अनुभूति वैराग्य संतान स्त्री घर तथा अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्ति अच्छी तथा बुरी घटनाओं के प्रति संभाव मेरे यानी भगवान श्री कृष्ण के प्रति निरंतर अनन्य भक्ति एकांत स्थान में रहने की इच्छा जन समूह से विलगाव आत्म साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकारना तथा परम सत्य की दार्शनिक खोज। भगवान कहते हैं इन सबको मैं ज्ञान घोषित करता हूं और इनके अतिरिक्त जो भी है वह सब अज्ञान है। बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड में भगवान बता रहे हैं कि ये सब तो ज्ञान है और इसके अलावा जो कुछ भी है वो अज्ञान है। तो श्रीमद् भागवतम एक अन्य शास्त्र का महत्वपूर्ण अंग है तो उसके अंदर बताया गया है कि विद्या दो प्रकार की होती है। एजुकेशन दो प्रकार की होती है, एक होती है पराविद्या और एक होती है अपराविद्या। परा और अपरा, अपरा मतलब निम्न स्तर की और परा मतलब उच्च स्तर की विद्या। तो वो विद्या जिसका संबंध केवल इस भौतिक जगत से होता है, इस भौतिक जगत में हम कैसे रहें खाएं पिए और मौज करें इस विचारधारा को लेकर के इस भौतिक जगत की जो स्टडी होती है ज्ञान होता है इस भौतिक जगत से संबंधी उसे कहते हैं अपरा विद्या, इंफीरियर नॉलेज एजुकेशन सिस्टम। और जिस विद्या, जिस ज्ञान का संबंध हमारे नित्य जीवन से होता है, ऐसा जीवन जिसमें हम दिव्य स्थिति, सत चित आनंद, जिसके तीन भाग हैं, सत मतलब नित्यता, इटर्निटी, जहां जन्म और मरण नहीं होता है, ऐसे स्थिति को प्राप्त करने से संबंधित ज्ञान, चित मतलब पूर्ण ज्ञानवान होना, आत्मा और जड़ में क्या भेद है इसको समझना, आनंद, ऐसी स्थिति को प्राप्त करना जहां पर हम संपूर्ण रूप से आनंद प्राप्त कर सकें, तो ऐसी स्थिति को प्राप्त करने से संबंधित जो ज्ञान होता है, एजुकेशन होती है, उसे कहते हैं पराविद्या। तो भगवान कहते हैं ये विषय जो है विद्या है, और इस भौतिक संसार को, इसको भोगने की दृष्टि से जो स्टडी की जाती है वो अविद्या है, क्योंकि जो वो स्टडी है इस भौतिक जगत की, इसको एंजॉय करने के लिए, एक्सप्लॉइट करने के लिए, वो कारण बनता है हमारे बंधन का, और अधिक हम इम्प्लिकेटेड होते जाते हैं, बनते जाते हैं इस भौतिक जगत की जटिलताओं में। तो हम सब लोग स्वतंत्रता चाहते हैं, ये आनंदित होने के लिए एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है, फ्रीडम। लेकिन जैसा हम पिछली क्लासों में भी डिस्कस किए हैं कि हम सब अनुभव करते हैं कि हम अनेक बंधनों में बंधे हुए हैं, इस शरीर में बंधे हुए हैं, और इस शरीर की वजह से जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और बीमारियां बंधे हुए हैं, हमको विवश होना पड़ता है मरने के लिए, बूढ़ा होने के लिए इत्यादि। तो जितना अधिक हम इस भौतिक जगत को भोग करना चाहते हैं, उतना ही हम इसकी जटिलताओं में फंसते जाते हैं। तो आज आप जो एजुकेशन ले रहे हैं, उसका हेतु क्या है, किस प्लानिंग से हमारे पेरेंट्स या हमारी सोसाइटी हमको ये एजुकेशन सिस्टम भेजती है, क्या हेतु से भेजती है, आप में से कोई बताएंगे, उनके मन के अंदर क्या है, क्यों भेजते हैं, क्यों आपको पुश करते हैं, जाओ कॉलेज में जाओ, हायर एजुकेशन लो, और हायर, और डिग्रियां जितनी हो उतनी लो, क्या उनके हेतु क्या है उसके पीछे, किस लिए ये सब। हाँ, तो ज्यादा पैसे कमाएगा और अपना जीवन ज्यादा अच्छा करेगा, करेक्ट। तो यानी कि क्या सोचा जाता है कि ज्यादा पैसा कमाने से हमारा जीवन ज्यादा अच्छा होगा, करेक्ट। अच्छा, अच्छे जीवन की परिभाषा, अच्छा जीवन मतलब किसे कहेंगे आप अच्छा जीवन, मान लीजिए इस जीवन में आप बहुत पैसा इकट्ठा किए बिल गेट्स की तरह, और अगले जीवन में आपको पता नहीं क्या होने वाले हैं, और अगले जीवन में आप कुत्ता बिल्ली बन जाते हैं, तो क्या आप इसको अच्छा जीवन कहेंगे, करेक्ट। ये तो टेम्पररी सिचुएशन हुई। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आप सबके सोचने के लिए कि अच्छा जीवन क्या है, अच्छा जीवन क्या है। Yes. हाँ जी, टू डू ए जॉब वी लाइक, टू गेट ए गुड जॉब, है अच्छा जॉब। और आजकल अच्छे जॉब की परिभाषा क्या है, जिसमें ज्यादा मेहनत करनी पड़े, इन विच यू आर इंटरेस्टेड, मीन्स यू मे बी इंटरेस्टेड नॉट इंटरेस्टेड, बट फॉर मनी यू हैव टू वर्क 10-12 आवर्स। आप देखो कोई भी जॉब पे है, वो लोग किसकी इंतजार कर रहे हैं, ब्लू मून डे बोलते हैं, मून डे इज ब्लू मून डे, मंडे आना मतलब फिर वही दोबारा से काम, सैटरडे संडे वेटिंग फॉर हॉलीडेज, सैटरडे संडे। तो अगर आप, इफ यू आर एट द जॉब विच यू वॉन्ट, देन व्हाई यू आर लुकिंग फॉर द हॉलीडेज? अगर आप वास्तव में आप वो जॉब चाहते हैं तो फिर छुट्टी छुट्टी के पीछे क्यों है? कब छुट्टी मिलेगी, कब छुट्टी मिलेगी? कैसे मैनेजर को मूर्ख बना करके आज आधा घंटा कट लग जाए तो अच्छा है, कब घर पहुंचेंगे, कब? तो कितने लोग हैं जिनको वास्तव में अपना जॉब, सो कॉल्ड जॉब करने में ही आनंद आता है? अभी आप जॉब पे गए नहीं है ना? एनीबडी हियर हु हैज गॉन टू जॉब? Yes, he is on the job. He is working in Alicon company, a very good post. So, क्या आप मंडे का इंतजार करते हैं? कब मंडे आएगा छुट्टी के बाद, कि इंतजार करते हैं कि संडे का? संडे का. तो आप जॉब करते हैं, खूब पैसा मिलेगा, अल्टीमेटली अपनी फैमिली के साथ से आप अच्छे से समय बिता पाएंगे, हाँ? लेकिन फैमिली के साथ समय बिताने का टाइम ही नहीं है जॉब करते करते. तो आप पैसा कमा रहे हैं, ओ फैमिली के साथ मैं समय बिता सकूं, लेकिन उसके लिए समय नहीं है, अच्छा खा सकूं, खाने के लिए समय नहीं है, चलते चलते खाना पड़ता है. और खाने के लिए इतनी सारी चिंताएं हैं कि डाइजेशन नहीं है ठीक. एनीवे, ये तो छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन अंततः यह विचारणीय प्रश्न है कि सुखमय जीवन क्या है. हम सबको, आपकी एज 20 इयर्स होगी, करेक्ट? तो जैसे एक प्रोग्राम, कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग करते हैं ना, ऐसे एक आपको एक प्रोग्राम करके एक इमेज दी हुई है. दिस इज द इमेज ऑफ ए हैप्पी लाइफ, ए लाइफ वेयर यू हैव डिग्रीज, जिसके ऊपर आपको एक अच्छा जॉब मिल जाएगा और जिस पर आप एक खूब पैसा कमा लोगे, एंड देन एवरीथिंग विल बी फाइन. लेकिन अगर ऐसा होता तो जो वर्ल्ड की सबसे रिच कंट्रीज हैं, तो आप गए हैं अमेरिका? आप कभी सुने हैं? आपने कोई रिलेटिव आपके? हाँ. सो अमेरिका के अंदर लॉस एंजल्स जो जगह है, दैट इज द बेस्ट इन अमेरिका. वहां पर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स बहुत, इंडिया से बहुत है. तो हमारे बहुत भक्त लोग भी वहां रहते हैं, भक्त बने हैं वहीं पर लॉस एंजल्स में. तो आप उन लोगों से जाके पूछिए, वो लोग बताते हैं दे आर नॉट हैप्पी, प्रसन्न नहीं है, खुश नहीं है. तो ये ख्याली पुलाव दूसरी चीज है, सोचना कि हम ऐसे होके हो जाएंगे, लेकिन वास्तव में भौतिक दृष्टि से भी वो लोग सुखी नहीं है. अनंत अनंत चिंताएं हैं, इनसिक्योरिटी, जॉब इनसिक्योरिटी. इसके सब इंश्योरेंस हैं आपके पास, लाइफ भी सिक्योर नहीं है, जॉब भी सिक्योर नहीं है, पत्नी भी सिक्योर नहीं है, नथिंग इज सिक्योर, एवरीथिंग इज इनसिक्योर. सो इन द एटमॉस्फेयर ऑफ इनसिक्योरिटी, हाउ डू यू फाइंड पीस? एंड विदाउट पीस वेयर इज द हैप्पीनेस? अशांतस्य कुतः सुखम, यदि शांति नहीं है तो सुख नहीं हो सकता. तो आज के आपके स्टूडेंट के माहौल में देख लीजिए, स्टूडेंट लाइफ में ही कितनी प्रकार की चिंताएं हैं. पहले तो आपको एडमिशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जहां जाते वो चिंता है. उसके बाद क्लास में अच्छा नंबर आना चाहिए, वो चिंता है. उसके बाद क्या करते हैं आप, क्या पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं आप? बीएससी मीन्स बीएससी. तो चाहे कोई बीएससी हो, चाहे कोई इंजीनियर हो, जॉब मिलेगा कोई पक्का नहीं, करेक्ट? वो भी एंग्जाइटी है ना, चिंता है. और जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे और मुश्किल होता जा रहा है, करेक्ट? तो वो एक चिंता है कि माँ बाप ने इतना इतना एक तो डोनेशन दे करके यहाँ पर बहुत पैसा खर्च करके आते हैं, और उसके बाद भी जाने क्या होगा. सो चिंता अपरिमेयम, अनलिमिटेड चिंताएं रहती हैं, पीयर प्रेशर, क्लासमेट सबके आगे कौन आगे है, कौन किसको ज्यादा इंप्रेस कर रहा है, वो प्रेशर, वो एंग्जाइटी, ऐसे अनलिमिटेड एंग्जाइटी। और जब चिंताएं रहती हैं मन के अंदर, तो आपका पैसा आपको सुखी नहीं कर सकता। इसलिए बहुत धनी लोग हैं, बहुत अच्छी डिग्री है, बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन सुसाइड करते हैं। तो क्यों? तो सुख क्या है उसको गहराई से सोचना पड़ेगा। केवल जो हमारे माइंड में एक इमेज बना दी गई है कि खूब पैसा होने से और खूब अच्छा इंद्रिय भोग के साधन हमारे पास यदि होंगे तो हम सुखी हो जाएंगे, ऐसा नहीं है, ये वास्तविकता नहीं है। रूपा जी बताते हैं कि वास्तव में बहुत ही दृष्टि की बात कर रहे हैं, अभी हम आध्यात्मिक पे गए नहीं, अभी हम लोग केवल मेटीरियल लाइफ की बात कर रहे हैं। मेटीरियल एडवांसमेंट मीन्स व्हेन यू कैन फुलफिल योर बेसिक नेसेसिटीज एडिक्वेटली, जब आप अपनी शरीर की आधारभूत आवश्यकताओं को आसानी से संपूर्ण कर सकें, पूरा कर सकें, उसे कहते हैं अच्छा भौतिक जीवन। तो शरीर की चार आवश्यकताएं हैं, एलिमेंट्री रिक्वायरमेंट्स, आहार, निद्रा, भय और मैथुन, ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग एंड डिफेंडिंग, करेक्ट। ये चार शरीर की आधारभूत आवश्यकताएं हैं, बेयर नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, सब स्वीकार करते हैं। तो अच्छा भौतिक जीवन है जिसमें ये चारों चीजें आपको रहने दीजिए, कोई बात नहीं उसके लिए। तो चारों चीजें जब आसानी से आपको मिल रही हो तब आप भौतिक दृष्टि से सुखी कहलाएंगे। तो आज की आप एडवांस सिविलाइजेशन को देखिए, अमेरिका, वी विल सी अमेरिका, एडवांस्ड कंट्री, मेटीरियली एडवांस, जो आप होना चाहते हैं। कितने लोग अमेरिका जाना चाहते हैं, अमेरिका या कनाडा? केवल एक, बाकी लोग अभी नीचे करूं कि यहां आपको पता है कि यहां तो उल्टा ही बोलने वाले हैं। तो ये चार चीजें जो बेसिक नेसेसिटीज हैं, तो आप देखिए, ईटिंग, तो खाने के लिए जो मनुष्य की खुराक है, अच्छी उसको सब्जियां मिले, घी मिले, दूध मिले, जिससे बहुत सुंदर सुंदर व्यंजन बनाए जा सकते हैं। तो जैसे जैसे हम प्रगति कर रहे हैं वैसे वैसे इन चीजों की कमी हो रही है। आप अपने घर में जाके पूछेगा अपने दादाजी से या दादी से, आज पानी बिकने लगा है, पहले दूध भी नहीं बिकता था, जिसको जितना चाहिए दूध होता था घर में। आज आपको फ्रेश खाने के लिए चीजें भी नहीं है, वो सब इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ना जाने कितने कितने समय का पुराना सब्जियां। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने खेत में से डायरेक्ट उगा हुआ सब्जी वो खाए हैं? है किसी का एक्सपीरियंस? काफी लोग हैं, गुड। तो उसको कंपैरिजन कीजिए आप जो आपके सुपरमार्केट ग्रेनरी से मिलते हैं आइटम, टेस्ट नहीं है, या जो संकर चीजें हैं टोमेटो या इत्यादि, टेस्ट नहीं है। और कार्सिनोजेंस हैं, आप जानते हैं इसके बारे में, कार्सिनोजेंस कितने कैंसर बढ़ रहे हैं, क्यों? क्योंकि अलग अलग प्रकार के पेस्टिसाइड्स डाले जाते हैं। और अमेरिका के अंदर फास्ट फूड्स, इंडिया में भी आ रहा है फास्ट फूड्स, तो उसके लिए प्रिजर्वेटिव चाहिए, तो प्रिजर्वेटिव्स के अंदर कार्सिनोजेंस। और फिर आज ऐसा घर का माहौल नहीं है कि घर में पत्नी है जो आपके लिए खाना बनाती है, पत्नी भी जॉब पे है, आप भी जॉब पे हैं, पत्नी को टाइम नहीं है, पता नहीं कब आप आ रहे हैं, आपको पता नहीं कब वो घर पे है, माइक्रोवेव ओवन है, आओ अपने आप माइक्रोवेव ओवन में गर्म करो और खा लो। तो माइक्रोवेव ओवन अगेन कार्सिनोजन प्रोड्यूस करता है। तो आप देखिए, तो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से आज लोगों का हेल्थ कैसा है, आप अपने घरों में देखेंगे, दादाजी और इन सबका हेल्थ, पुराने लोगों का, मजबूत होते थे कि नहीं? और आजकल के लोग कैसे हैं? हेल्थ नीचे जा रहा है ना, तो क्यों? क्योंकि अच्छा खाने को नहीं है। आज बहुत कितने लोग घरों में ऐसा है कि खूब दूध है, खूब घी है, बहुत महंगा है सब, कितना रेट बढ़ रहा है, और अच्छा अच्छा क्वालिटी सब एक्सपोर्ट हो रहा है। तो सब जगह ये प्रॉब्लम है। अमेरिका वो दिखता अच्छा है, वहां जाके आप देखिए तो कितने लोग वहां वास्तव में गरीबी की लाइन से नीचे हैं। गरीबी की डेफिनेशन, जिनको अच्छा ये चार चीज नहीं मिलती हैं, जिनकी लाइफ इनसिक्योर है, ऐसे लोगों को आप काउंट कीजिए, वो स्टैटिस्टिक्स है। तो ईटिंग इज नॉट गुड ईटिंग। क्या कहते हैं? गाय का मांस खाते हैं, बीफ, जो आदमियों के लिए खाने के लिए योग्य नहीं है, वो भी कैंसर का कारण होता है। मेडिसिन की बुक में आप देख सकते हैं, बेली एंड लव में। फिर स्लीपिंग, तो स्लीपिंग की तो ये हालत है कि जब तक खाने की गोली नहीं लेते हैं तब तक नींद नहीं आती है। जो जितने ज्यादा धनी हैं, जो जितने ज्यादा बड़ी पोस्ट पे हैं, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी चिंताएं हैं दिमाग के अंदर, टेंशन अलग अलग प्रकार की। वहां पर अमेरिका के अंदर 30-50% बच्चों को स्कूल के अंदर साइकेट्रिक ड्रग्स दी जाती हैं, साइकेट्रिक मेडिसिन। बच्चों के अंदर इतनी प्रॉब्लम है, साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स हैं बच्चों में, चिंताएं, डिप्रेशन है, और बड़ों में तो क्या हाल है आप सोच सकते हैं। तो क्योंकि इनसिक्योरिटी है, आप रात को जाएंगे अगर अकेले सड़क पे, यहां जैसे नहीं है, यहां अभी भी बहुत सेफ है, अमेरिका में ऐसे नहीं है, आप अकेले ऐसे निकल जाएं कोई गारंटी नहीं है कि आप वापिस आएंगे रात को, वेरी इनसिक्योर। कौन कब आगे कहां शूट कर दे, वेरी मच, अभी भी इंडिया में हो रहा है लेकिन वहां और ज्यादा है, वेरी इनसिक्योर। इनसिक्योर अबाउट योर लाइफ, अबाउट योर बिजनेस। आज का ये जो बिजनेस है या जो भी है, इतना रैपिडली चेंज होता है, और इतने बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज में आ रहे हैं कि छोटा मोटा व्यापार करेंगे आप तो वो बड़ी बड़ी कंपनियां कब खा जाएंगी उसका पता नहीं, और जॉब करेंगे तो जॉब भी इतनी जल्दी चेंज हो रहे हैं। आज जो चीज प्रोड्यूस हो रही है तो नए नए मॉडल आते जा रहे हैं, नई नई चीज आती जा रही है, तो जो आपका प्रेजेंट जॉब है तो चेंज हो जाएगा, बदलना पड़ेगा उसको। कितनी कंपनी बदलती है, कितनी कंपनी बंद होती है, कितनी नई नई निकलती रहती है, ये आज की इकोनॉमी की हालत है। तो जॉब की इनसिक्योरिटी है। अब आप जब आगे जॉब करेंगे तो कोई भी प्रोफेशनल जनरली मल्टीनेशनल कंपनीज में 2 साल से ऊपर एक जगह पे नहीं रहते हैं, दे कीप ऑन चेंजिंग जॉब्स। कब कौन सी कंपनी बंद हो जाए पता नहीं, जॉब इनसिक्योरिटी। पहले तो जॉब लेने की इनसिक्योरिटी है, आप इतना सब पढ़ लिए 25-30 साल बाद अभी आपको पता नहीं कहां जॉब मिलेगा, क्या मिलेगा, यू नॉट श्योर क्या होगा। फिर आहार, निद्रा, भय मतलब डिफेंस, तो सुरक्षा की प्रॉब्लम है, बड़े बड़े लॉकर्स, यहां डिपॉजिट वहां डिपॉजिट रखते हैं आप लोग, बैंक के बैंक उड़ जाते हैं, आप अपना बैंक में पैसा रखे पूरा पता लगा बैंक उड़ गया, अगेन इनसिक्योरिटी, अनसर्टेनिटी। और फिर मैथुन यानी फैमिली लाइफ, तो फैमिली लाइफ अमेरिका 2 साल के अंदर 30-40% डाइवोर्स, तो आजकल की जनरेशन है उनकी कितने लोगों की अच्छी फैमिली लाइफ होगी कोई गारंटी नहीं है, कितनी पत्नियां चेंज करनी पड़ेंगी नोबडी नोज। अमेरिका में तो अभी मैरिज ही नहीं होता है, सीधा लिविंग, बस पार्टनर्स, इससे शादी मत करो, जब तक साथ रहो जब अच्छा लगेगा तब तक, फिर बाद में दूसरा कोई, सेकंड पार्टनर, थर्ड पार्टनर, फोर्थ पार्टनर, ये सब भारत में भी आ रहा है, तो कोई फैमिली लाइफ नहीं है। तो ये 4 आधारभूत आवश्यकताएं हैं, यही पूरा नहीं है तो फिर हम एडवांसमेंट की बात क्या करते हैं। तो आर्टिफिशियल नेसेसिटीज से लाइफ सुखदायक नहीं होती है। तो अमेरिका के अंदर सबके पास कार है, तो आपको लगता है कि हाथ मुंह में हाथ नहीं देना चाहिए, ठीक है, तो कार आपको लगे हाँ सबके पास कार है, बहुत अच्छा है, वहां का जीवन कितना अच्छा है, लेकिन एक कार को मेंटेन करने में एक अमेरिकन हर दिन अपना 1/3 टाइम अपनी कार को मेंटेन करने में लगाता है, 1/3 ऑफ हिज टाइम एवरी डे। कार को मेंटेन करने लगाता है, कार के लिए पेट्रोल और कार की मेंटेनेंस, उस सब के लिए इतना मेहनत करना पड़ता है उसको 1/3 डे, और वहां बिना कार के भी रह नहीं सकते, ऐसी सोसाइटी बन गई है। विदाउट कार यू कांट सर्वाइव देयर। आपको कुछ खरीदने आना है तो कार में जाना पड़ेगा, बच्चों को स्कूल छोड़ने आना तो कार में जाना पड़ेगा, यू कांट सर्वाइव विदाउट कार, यू आर डिपेंडेंट ऑन द कार। एक पोल लिया गया, कंसेंसस लिया गया, तो 50% अमेरिकन्स ने ये अपना इच्छा व्यक्त किया कि हम लोग, अगर हमको ऑप्शन मिले तो हम ऐसी जीविका चाहेंगे, ऐसा जीवन चाहेंगे जिसमें हमको कार पर निर्भर ना होना पड़े। अपने बच्चों को छोड़ने के लिए हम चाहेंगे हमारा जॉब चलने के वॉकिंग डिस्टेंस पे हो, हमारी शॉपिंग वॉकिंग डिस्टेंस पे हो। 50% फ्रस्ट्रेटेड विद द कार, कार इज नो मोर लग्जरी देयर। सिमिलर विद एवरीथिंग। तो अलग अलग प्रकार की जो आर्टिफिशियल नेसेसिटीज हम लोग बढ़ाते जा रहे हैं, सोच रहे हैं कि ये हमको सुख देंगी, वास्तव में ये हमको और हमारी लाइफ को कॉम्प्लिकेट कर रही हैं। तो अमेरिका में एक ड्रीम था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, द ग्रेट अमेरिकन ड्रीम। तो एक पार्क है वहां पर बच्चों का म्यूजियम, तो उसमें वो एक रूम है द ग्रेट अमेरिकन ड्रीम, तो उसमें टीवी रखा है जहां पर वो अमेरिका ऐसा होगा कुछ साल बाद उसको बताया है। तो उसमें एक ड्रीम था कि अमेरिका के अंदर आने वाले समय में इतनी सब मैकेनाइज्ड काम हो जाएगा, इतनी सब मशीनें होंगी, इतना सब अच्छा होगा कि केवल 14-hour week हो जाएगा, एक सप्ताह में केवल 14 घंटे काम करना पड़ेगा और बाकी टाइम में आप अपने परिवार के साथ रहो और घर पे भी आपके पास मनोरंजन के लिए अलग अलग टीवी और अलग अलग वीडियोज एंड सो मेनी मशीन्स होंगी जो आपको एंटरटेन करेंगी, और घर का काम करने के लिए आपके पास टाइम सेविंग मशीन्स होंगी, वॉशिंग मशीन्स, टाइम सेविंग मशीन्स बोला गया आपको, टाइम सेविंग, ये सब आपका समय बचाएंगे। तो इस तरीके से लाइफ विल बी वेरी नाइस, जस्ट 14 hours a day वर्क ए वीक यू हैव टू वर्क। और आज क्या स्थिति है, 1956 में ये ड्रीम था, और आज की अमेरिकन लाइफ में कोई भी घर में, मैक्सिमम घर में पति पत्नी दोनों काम करते हैं, बोथ हस्बैंड वाइफ काम करते हैं। और कितना घंटा काम करते हैं एक वीक के अंदर, 70-90 hours a week, 70-90 hours इफ यू इंक्लूड द ट्रांसपोर्टेशन, जो कि हर दिन में कम से कम 2-3 घंटा ट्रांसपोर्टेशन में जाता है। 72 कहां 14 hours, उस समय 50 hours week था 1956 में, जो आज बढ़कर के 70-90 हो गया और एक आदमी की जगह दोनों आदमी काम कर रहे हैं, वो टाइम सेविंग मशीन्स कहां गई, वो सब टाइम सेविंग मशीन है, पर उस टाइम सेविंग मशीन को खरीदने के लिए, मेंटेन करने के लिए और ज्यादा टाइम लगाना पड़ रहा है। सो अल्टीमेटली टाइम सेव कहां हुआ, सो व्हाट हैपेंड टू दैट ड्रीम। और हम भी उसी ड्रीम की तरफ बह रहे हैं, और वो ड्रीम के साथ अनेक 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 समस्याएं। अमेरिका के अंदर एक बहुत बड़ी समस्या है ओल्ड एज केयर प्रॉब्लम। वहां कोई भी अपने मां बाप की देखभाल करने के लिए वो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि फैमिली सेटअप है ही नहीं, कोई बच्चा अपने मां बाप का ध्यान नहीं रखना चाहता है, तो वो सब जिम्मेदारी किसके ऊपर आती है, ओल्ड एज की, ओल्ड एज केयर केयर करने की, गवर्नमेंट के ऊपर। तो अमेरिका ओल्ड एज केयर में जो पैसा लगाती है वो इंडिया के ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट से भी ज्यादा है, कैन यू इमेजिन। और ये समस्या आज भारत में भी आ रही है। हम लोग क्या है, इंडियंस अपने को बड़ा क्लेवर सोचते हैं, इंटेलिजेंट सोचते हैं, हम सोचते हैं हम अमेरिकन से उनकी केवल जो मॉडर्न एडवांसमेंट है ये सीख लेंगे, अपना लेंगे, और जो मॉडर्न एडवांसमेंट के साथ जो सब समस्याएं आ रही हैं वो छोड़ देंगे, क्योंकि हम इंडियंस हैं, वी आर द मोस्ट इंटेलिजेंट पीपल इन द वर्ल्ड। तो केवल अमेरिका से जो हम एडवांसमेंट है वो सीख लेंगे, और जो उसकी कनकॉमिटेंट प्रॉब्लम्स हैं, डाइवोर्स, सुसाइड, डिप्रेशन, ओल्ड एज प्रॉब्लम्स, सो ऑल दिस प्रॉब्लम्स, ये सब समहाउ इसको हम बच जाएंगे, लेकिन इट्स इम्पॉसिबल। ये एडवांसमेंट के साथ रची बसी है ये सब प्रॉब्लम्स, और ये हम फेस कर रहे हैं आज। तो 1956 के टाइम में एक सर्वे लिया गया था कि अमेरिकन स्कूल में सबसे बड़ी समस्याएं क्या हैं बच्चों की, तो वो समस्याएं थी एब्सेंटिज्म, स्कूल में ना आना और च्युइंगम खाना। और आज के अमेरिकन स्कूल में सबसे बड़ी समस्याएं क्या है, ड्रग एडिक्शन एंड वायलेंस। कहां है च्युइंगम खाने की समस्या और कहां है ड्रग एडिक्शन की समस्या, कहां है एब्सेंट होने की समस्या और कहां है वायलेंस, आकर के शूट कर देते हैं। एक 12 ईयर ओल्ड बॉय विल कम एंड विल शूट। जस्ट सी द कॉम्प्लिकेसी ऑफ द प्रॉब्लम्स, कितनी कॉम्प्लिकेट हो रही है प्रॉब्लम। तो जितना हम आधुनिकीकरण की तरफ जा रहे हैं, कृत्रिम आवश्यकताओं को बढ़ा के अपने जीवन को जटिल जटिल बनाए जा रहे हैं और उन जटिलताओं में खुद फंसते जा रहे हैं। जैसे सिल्क वॉर्म, जानते हैं आप सिल्क वॉर्म का कैसे, तो वो सिल्क बुनता है, बनाता है और उसके अंदर अपने आप ही बंद हो जाता है और उसकी समाधि वहीं लग जाती है। ऐसे ही हम लोग अपनी सोसाइटी को कॉम्प्लिकेट बना रहे हैं और उसी की विषमताओं में खुद फंसते जा रहे हैं, खुद उसमें इम्प्लीकेट होते जा रहे हैं, फंसते जा रहे हैं। तो इसीलिए जड़ विद्या, ये जो आर्टिफिशियल नेसेसिटीज को क्रिएट करने की जो विद्या है, इसको जड़ विद्या जिसे कहते हैं, जो बेयर नेसेसिटीज के अलग करते हैं, वो हमारे सुख का कारण नहीं होता है, अल्टीमेटली वो हमारे दुख का कारण होता है। इसलिए गांधी जी हमेशा क्या प्रोपगेट किए, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। और आज का फिलॉसफी क्या है, हाई लिविंग नो थिंकिंग। आप देखिए, चाणक्य पंडित ने कहा है, पंडित कौन है, पंडित लर्नेड मैन, हु यू कॉल ए लर्नेड मैन, मातृवत सर्वदारेषु मातृवत, परदारेषु मातृवत, सर्वभूतेषु आत्मवत, परद्रव्येषु लोष्टवत, यह पश्यति स पंडितः। तो पंडित की तीन कैरेक्टरिस्टिक बताई हैं, एक जो दूसरे की स्त्री को मां के रूप में देखे, जो दूसरे की संपत्ति को पत्थर मिट्टी के समान देखे और जो सब अन्यों को अपने समान देखे, उसे कहते हैं पंडित। ये लर्नेड की डेफिनेशन। लेकिन आजकल के जो लर्नेड हैं उनके अंदर इन तीनों में से कोई क्वालिफिकेशन मिलती है क्या, वो दूसरे की स्त्री को मां के समान देखते हैं, ये तो कहीं सिखाया नहीं आता, सबको गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की तरह से देखने सिखाया जाता है, करेक्ट, सबको भोग की वस्तु की तरह देखने सिखाया जाता है, तो कहां कैसे पंडित हैं वो। इसलिए आप देखिए, एक मेरे एक टीचर थे मेडिसिन में, पैथोलॉजी के, तो वो बहुत बढ़िया पढ़ाते थे, तो मैं सोचता था कि ये मेरे आइडियल हैं, इतना अच्छा पढ़ाते थे और बहुत लगते भी ठीक थे। तो जानते हैं सिटीज में कुछ थिएटर होते हैं जहाँ पर कुछ लोग ही जाते हैं, सो यू अंडरस्टैंड। तो मेरे कुछ फ्रेंड्स वहाँ गए थे, तो वो लोग वहाँ से आए तो बोले, अरे आज तो हमारे सर सबसे आगे बैठे थे पैथोलॉजी के। तो आई वाज सरप्राइज कि मेरा सब सपना चूर हो गया। मैं सोचा था कि इज अ वेरी नाइस मैन, बट वॉट इज, वो इतना अच्छा बोलता है लेकिन उसका करेक्टर तो थर्ड क्लास, ही इज गोइंग देयर टू सी सच मूवीज, सो वॉट इज हिज करेक्टर, इफ करेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट, बोला था ना। तो ये कहाँ है ट्रेनिंग करेक्टर की। फिर एक और टीचर आते हैं मेडिसिन के, तो वो कैसे स्मोकिंग इंजूरियस है इसके ऊपर घंटों लेक्चर दे दिया, सब कुछ अंदर पैथोलॉजी क्या होता है स्मोकिंग करने से क्या होता है, और फिर बाहर निकलते कार में बैठ करके स्मोकिंग शुरू कर दिया। तो ऐसे टीचर से हम लोग क्या, उनके प्रति हमारी इज्जत होगी, जस्ट मनी 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 मनी, दैट्स ऑल। तो यहां जो वातावरण है पूरा वो ऐसे ही है, जस्ट फॉर मनी, देर इज नो करेक्टर, देर इज नो। वो लर्नेड कैसे हैं, वो फिजिक्स जानते होंगे, कुछ केमिस्ट्री जानते होंगे, लेकिन उनका स्वभाव क्या है। और ये जो कोएड होता है तो उसमें यहां भगवान क्या कह भी नहीं सकते हैं, ऐसी ऐसी चीजें होती हैं, करेक्ट। देखे हमने सब अपने कॉलेज के अंदर लेडी स्टूडेंट्स एंड टीचर्स का संबंध अबॉमिनेबल, एक टीचर, एक शिक्षक, एक अध्यापक तो वो अपने बच्चों के समान समझता है ना अपने विद्यार्थियों को. एंड जस्ट सी द लेवल ऑफ टूडेज टीचर्स. तो क्या वो पंडित कहलाए जाएंगे? कहां वो बात है कि दूसरे को मां की तरह देखना चाहिए? तो ये तो जानवरों का स्वभाव है. जानवर को डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है कि मां कौन है, बहन कौन है. तो आजकल की एजुकेशन हमको ऐसी जगह ले जा रही है जहां पर हमको ये बोध भी नहीं रहता है कि कौन मां है कौन बहन. तो फिर क्या ऐसी एजुकेशन हेल्दी है? केवल सिखाया जाता है कि कैसे अधिक से अधिक लोभ. आजकल हम जाते हैं आपके यहां कॉलेज में, तो आपके जो अथॉरिटीज हैं उनको बोलते हैं आप कुछ कीजिए, ये बच्चों का बहुत आजकल बिगड़ रहे हैं, कुछ कीजिए, आप लोग आइए कुछ पढ़ाइए उनको, बताइए समझाइए, बहुत बिगड़ रहे हैं. लेकिन बिगड़ेंगे क्यों नहीं, आप ही तो उनको बिगाड़ रहे हैं. आपका पूरा एजुकेशन सिस्टम है कि खूब पैसा कमाओ और खूब एंजॉय करो. यानी कि किस पे आधारित है ये? लोभ, ग्रीडीनेस पे आधारित है, काम वासना पे आधारित है. कि आपने उनको बताया है कि जीवन का उद्देश्य है टू एंजॉय एज मच एज यू कैन, तो फिर क्यों वो नहीं एंजॉय करेंगे एज मच एज दे कैन, इन वॉट एवर वे दे कैन, जैसे भी वो करें, जैसे भी वो चाहें, वैसे क्यों एंजॉय नहीं करेंगे? आप ही तो उनको प्रशिक्षण दे रहे हैं, वो क्यों आप ही के बताए तरीके पे एंजॉय करें? उनका अपना तरीका है एंजॉय करने का. आप ही तो उनको लोभी बना रहे हैं, आप ही तो शिक्षण दे रहे हैं. आप कहां कह रहे हैं उनको कि जीवन का उद्देश्य भगवान की भक्ति है? आप कह रहे हैं जीवन का उद्देश्य है खाओ पियो और मौज करो, तो फिर यही तो कर रहे हैं वो. तो क्यों क्यों आप फिर कहते हैं कि बच्चे बिगड़ रहे हैं? आप ही बिगाड़ रहे हैं. तो यह हमारा दुर्भाग्य है कि जो हमारे कॉलेजेस हैं उसमें अविद्या हो पढ़ाई जा रही है. उसका अंतिम हेतु है काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष को बढ़ाना, इफ यू एनालाइज इट. क्योंकि सबके मन के अंदर बैठा दिया गया है कि जीवन का उद्देश्य है, जैसा आप लोगों ने बताया, खूब पैसा कमाओ. किस लिए? टू एंजॉय लाइफ. एंजॉय लाइफ मीन्स वॉट? टू एंजॉय जड़ मैटर, डेड मैटर. जितना भी मेटेरियल एंजॉयमेंट है उसका केंद्र क्या है? सब मेटेरियल एंजॉयमेंट आके टूट जाता है स्त्री पुरुष आकर्षण पे. ये भी आप एनालाइज करके देख लीजिए. टॉप मोस्ट मेटेरियल प्लेजर इज द प्लेजर ऑब्टेन्ड फ्रॉम जेनिटल्स. स्त्री पुरुष आकर्षण से और संबंध से जो आप आकर्षण, जो आनंद लेते हैं, बहुत ही जगत का वही सबसे बड़ा आनंद है और वही हर एक क्रिया के पीछे अल्टीमेट फैक्टर है. अच्छा बंगला, अच्छी कार, अच्छी एजुकेशन किस लिए? टू इंप्रेस द अपोजिट सेक्स, दैट्स ऑल. और यही कॉलेज का वातावरण है आज. एवरीबडी इज ट्राइंग टू इंप्रेस ईच अदर. और ये अभी तक नहीं, आज तक ये चलेगा. दिस इज मेटेरियल लाइफ. तो ये तो जानवरों का जीवन है, ये जानवर का जीवन है. मनुष्य जीवन हायर थिंकिंग के लिए है, उच्च सोच के लिए है, सेक्स प्लेजर के लिए नहीं है. सेक्स प्लेजर क्या है? स्किन डिजीज है, स्किन डिजीज, चर्म रोग, और कुछ नहीं है. इट्स जस्ट अ स्किन डिजीज. क्योंकि ब्यूटी क्या है? इट्स ओनली स्किन थिक. तो कोई मिसवर्ड है, जस्ट इमेजिन कि आप अगर उसकी वो स्किन नहीं है मिस वर्ल्ड की, तो विल इट बी ब्यूटीफुल? विल शी बी ब्यूटीफुल? मिस वर्ल्ड विदाउट स्किन, अबॉमिनेबल नहीं? तो इसका मतलब ब्यूटी क्या हुआ? स्किन थिक, करेक्ट. तो एक कहानी है, एक आदमी था तो वो एक स्त्री के पीछे मोहित था, लेकिन वो स्त्री सतीत्व थी, सती स्त्री थी. तो वो चाहती थी कि इस व्यक्ति की बुद्धि ठिकाने लगाई जाए. तो वो व्यक्ति गलत इरादे से उसके पास आता था, तो वो स्त्री एक दिन उसको बोली, ठीक है तुम ऐसा करो, 5 दिन बाद मेरे पास आना, मैं तुम्हारी सब इच्छाएं पूरी करूंगी. तो 5 दिन तक उसने क्या किया? परगेटिव्स और एमेटिक्स, यानी ऐसी चीजें जिससे उल्टी हो, ऐसी चीजें जिससे डायरिया हो, ऐसी चीजें ली. तो खूब उसको डायरिया हुआ, डिसेंट्री, और खूब उसको वॉमिट हुआ. तो वो जो भी कुछ बाहर निकला ऊपर से नीचे से, उसने सब पात्रों में, बर्तनों में इकट्ठा कर लिया. और वो भी कुछ सूख गई. आपको पता होगा जब उल्टी होती है और जब डायरिया होता है तो कैसे रहता है? सब सूख जाता है, पूरा शरीर, आंखें पूरा अंदर धस गई, चमड़ी पूरी ऐसे रिंकल हो गई, और 5 दिन बाद फिर वो बैठ गई बाहर। तो वो आदमी आया तो वो तो पहचान ही नहीं पाया उसको, क्योंकि वो तो बहुत सुंदर थी पहले, लेकिन 5 दिन के अंदर तो पूरी बदसूरत हो गई। तो वो तो पहचान नहीं पाया, तो उसने पूछा कि वो कहाँ है, तो उसने बोला वो तो मैं ही हूँ। तो उसको तो विश्वास ही नहीं हुआ, ऐसा कैसे, तो नहीं तो दूसरी है, तो बहुत सुंदर थी, उसकी तो आंखें ऐसी थी, वो तो ऐसी थी। तो बोले ये मैं ही हूँ सब, तो तुम्हारी सुंदरता को क्या हुआ। तो बोली वो मेरे जो सुंदरता थी वो मैंने अलग कर दी है अपने से अभी, और वो सुंदरता मैंने वहां जाके रखी है वो बर्तन में, तो वो जाके देखो वो मेरी सुंदरता है। तो फिर वो आदमी जाके गया और वहां देखा तो रिवोल्टिंग बदबू आ रही थी उसमें से। तो उसने कहा यही सब चीज जब मेरे अंदर थी शरीर में तब तुमको मैं सुंदर लग रही थी, और जब ये चीज मेरे शरीर से बाहर आ गई है तो तुमको मैं बदसूरत लग रही हूं। इसका मतलब सुंदरता किस चीज में थी, उन चीजों में थी। तो एक्चुअली दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ब्यूटी, पस म्यूकस बाइल हड्डियां चर्बी ये सब मिलाकर के सुंदरता, दैट्स ऑल। और इसी के पीछे आप एक दूसरे से मोहित हो रहे हैं और अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं, और इसी के लिए एंकरेजमेंट मिल रहा है। तो ये सब जवानी के अंदर बड़ी बड़ी उमंगे होती हैं, तो शुरू शुरू में तो लगता है केवल बस रोमांस, लेकिन वास्तविक जीवन केवल रोमांस नहीं है। वास्तविक जीवन में कपड़े धोने पड़ते हैं, कमाई करनी पड़ती है, वो आप पहले नहीं सोचते हैं, सोचते हैं एवरीथिंग विल बी जस्ट रोमांस। लेकिन जब वास्तविक जीवन प्रारंभ होता है तब लगता है वो रोमांस कहाँ गया, अभी तो यहाँ पर जीवन पालन पोषण करने के लिए कठिन मेहनत करनी है, कपड़े घर के काम करने हैं। तो ये सब इल्यूजन से बाहर निकलना, रियलिटी को समझना, ये ज्ञान है, ये विद्या है, जो कॉलेजेस में नहीं है, बल्कि इसका उल्टा प्रचार है। तो इसलिए भगवान यहां कह रहे हैं कि ये सब अविद्या है, क्योंकि ये आत्मा और शरीर में भेद के ऊपर आधारित नहीं है। केवल शरीर को अपना मान करके आई एम दिस बॉडी और बॉडी का सुख ही मेरा सुख है, इस मानसिकता पर आधारित है ये सब ज्ञान, इसलिए ये अविद्या है। तो विद्या क्या है, तो विद्या है रियलिटी को समझना कि हम आत्मा हैं, हम भगवान के नित्य दास हैं, ये भौतिक जगत एक जेल की तरह से है, यहां हम अंडर पनिशमेंट हैं। तो ये जो इस भौतिक जगत में एंजॉयमेंट के सभी हमारे प्रयास हैं वो अल्टीमेटली फ्यूटाइल हैं, व्यर्थ हैं, क्योंकि जब तक आप जेल में हैं तब तक आप सुख की कल्पना कर सकते हैं। जेल मतलब दुख का जगह है ना, अब जेल में आप सोच रहे हैं आई विल लिव कंफर्टेबल इन द जेल, इसका कोई अर्थ नहीं है। तो उसी प्रकार से ये जो भौतिक जगत है जेल है, क्योंकि यहां हम सबको जन्म मृत्यु जरा व्याधि और अनेक अनेक अन्य कष्टों से गुजरना ही पड़ेगा, गुजरते ही रहना पड़ेगा, तो फिर कहां पर सुख संभव है। इसीलिए यहां भगवद्गीता में इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं वास्तविक ज्ञान का एक महत्वपूर्ण अंग है जन्म मृत्यु जरा व्याधि के दोषों को समझना, टू रियलाइज द डिफिकल्टीज ऑफ बर्थ डेथ ओल्ड एज एंड डिजीज। तो वास्तव में एजुकेशन होनी चाहिए हाउ टू ओवरकम बर्थ डेथ ओल्ड एज एंड डिजीज, कैसे हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि को रोकें। तो आप में से कितने स्टूडेंट्स को पढ़ाया जा रहा है हाउ टू स्टॉप बर्थ डेथ ओल्ड एज एंड डिजीज, प्लीज रेज योर हैंड, हाउ मेनी ऑफ यू आर बींग टॉट। ऐसा कौन सी डिपार्टमेंट है यहां पूरे चारोत्तर विद्या मंडल में जिसमें यह एजुकेशन दी जा रही है कि मृत्यु के बाद क्या होता है, मृत्यु को कैसे रोका जा सकता है, बुढ़ापे को कैसे रोका जा सकता है, बीमारी को कैसे रोका जा सकता है परमानेंटली, नॉट जस्ट ओपनिंग हॉस्पिटल्स, दैट इज नॉट क्योरिंग डिजीज। आप एक डिजीज क्योर करते हैं, क्योर नहीं करते हैं, ट्रीट करते हैं, दूसरी बीमारी आती है, तीसरी आती है, अल्टीमेटली डिजीज रिमेन। तो आप में से कोई है जो ये शिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, कोई नहीं कर रहे हैं, कोई नहीं करा रहा है आपको जो यहां बताया गया है कि ये विद्या का अंग है जन्म मृत्यु जरा व्याधि की, कि ये कष्ट है इनको समझना, लेकिन आज की एजुकेशन है इनको भूलना, भूल जाओ जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इसको कवर कर लो। आप जानते हैं एक पक्षी होता है ऑस्ट्रिच, सुने आप नाम, तो जब कोई खतरा दिखता है आगे से, उसको कोई मारने के लिए आ रहा है, उसको दिखता है ऐसा, तो ऑस्ट्रिच क्या करता है, अपनी गर्दन अपना सिर वो जमीन में गाड़ देता है, देखता नहीं है और सोचता है अभी खतरा टल गया क्योंकि मैं खतरा नहीं देख रहा हूं, तो ये अच्छी फिलॉसफी है क्या? खर्च हो जाता है ऐसे ना देखने से, बल्कि आंख खोल करके देख करके भागने का प्रयास करना चाहिए। उसकी जगह आंख बंद करके खड़े हो गए, खतरा टल गया तो आराम से वो बिना किसी रुकावट के, वो अगर कोई शिकारी है या जो भी जानवर है आराम से उसको खा लेगा। तो आज की सोसाइटी आप एनालाइज कीजिए, ये कवर अप करने के लिए है, क्योंकि सबको तो पता है कि सबको मृत्यु आनी है, सबको बुढ़ापा आना है, सबको बीमारी आनी है, सबको हृदय में जानते हैं। अभी बॉम्बे में अचानक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, कितने लोग मर गए, वहां सुनामी आ गया, वहां ये हो गया, और वो सब छोड़िए, आज दादाजी मर गए, आज ये मर गया, इसको हार्ट अटैक हो गया, ये हो गया, सो मेनी पीपल आर डाइंग एवरी मोमेंट, ये हम तो जानते हैं। और हम सबके हृदय में डर है, मेरे को ही मरना पड़ेगा, मेरे रिलेटिव्स भी मरेंगे, सबको डर है अंदर से। लेकिन उसको भुलाने के लिए हम ये सब पूरा प्रपंच पड़ा कर रहे हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग्स, बड़े बड़े इन्वेंशंस, जिससे कि हमारा ध्यान उस तरफ जाए नहीं, हम लोग ये सोचे नहीं है मृत्यु के बारे में। अरे यार ये टॉपिक मत सोचो यार, डोंट डिस्कस दिस, वेरी बैड टॉपिक, जस्ट बी बिजी इन क्रिएटिंग समथिंग, क्रिएटिंग एंड डिमोलिशिंग, ये सिविलाइजेशन है आज की, क्रिएटिंग एंड डिमोलिशिंग, कोई चीज बन रही है कोई चीज बिगड़ रही है। सब बड़ी बड़ी सिटीज में क्या है, बिल्डिंग बना रहे हैं, बिल्डिंग बनाना मतलब क्या, ईंटें एक के ऊपर एक को रखना, करेक्ट, मिट्टी इकट्ठा करना। आपने देखा है एंट हिल, चींटी क्या करती है, मिट्टी इकट्ठा करती है। तो ये बड़े बड़े बिल्डर्स या बड़ा बड़ा जो बन रहा है सिटी, वो क्या है, चींटी की तरह से मिट्टियां इकट्ठा करना है, और कुछ दिन बाद में वो सबको ढा देना है। बिल्डिंग बनेगी पुरानी, ढा दो अभी दूसरी बिल्डिंग बनाओ। तो जानवरों का काम है पत्थर इकट्ठा करना, ये तो चिड़िया भी करती है, घोंसला बनाना, उसमें क्या बड़ी बात है। तो ये जो सिविलाइजेशन है या ये जो एजुकेशन है जिसमें ये सब ज्ञान नहीं है बल्कि कवर अप है। जैसे आप देखते हैं कोई व्यक्ति शराब पीना शुरू करता है जब उसको बहुत कोई शौक होता है, जैसे पिक्चरों के डायलॉग बोले आते हैं, गम भुलाने के लिए शराब पीते हैं, गम भुलाने के लिए, तो कवर अप करने के लिए, बहुत एंग्जाइटी बहुत चिंता है बहुत परेशानी, इसलिए क्या करते हैं उसको भुलाने के लिए शराब पी लेते हैं, थोड़े समय के लिए भूल जाओ। और इसी आप सोचिए हर काम हम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि अदरवाइज लाइफ इज वेरी बोरिंग। आप कितने अपने ऐसे स्टूडेंट हैं यहां पर जो अपनी स्टडीज को एंजॉय करते हैं, फ्रेंकली यू टेल मी हाउ मेनी ऑफ यू रियली एंजॉय योर स्टडीज, या कितने लोग इसलिए करते हैं कि आए हैं पेरेंट्स बोलते हैं पढ़ना है और डिग्री लेना जरूरी है क्योंकि पेट भरना है इसलिए कुछ करना पड़ेगा, इसलिए करते हैं। मेजोरिटी होंगे जो इसलिए करेंगे, और जो आज बड़े एंथुजियास्टिक हैं, वी लाइक टू स्टडी, तो कब तक रहेंगे वो एंथुजियास्ट, बिकॉज बाय नेचर ये मेटेरियल वर्ल्ड, ये जड़ विद्या, ये बोरिंग है, इट इज बोरिंग क्योंकि ये आत्मा संबंधित नहीं है। लेकिन हमको विवश होकर करना पड़ता है स्टेटस के लिए, स्टेटस, ज्यादातर हमारा जीवन किससे चलता है, पड़ोसी पड़ोसी को देख के चलता है। हमारे को कार नहीं चाहिए लेकिन पड़ोस में कार आ गई, अभी हम के बिना कार कैसे रहेंगे अभी, तो घर के सब रिलेटिव बोलेंगे अजी सुनो जी उसके पास कार आ गई हमारे पास ही नहीं है, क्या सोचेंगे सब लोग। या एक और फेनोमिनन, आप लोग तो अभी इससे वाकिफ नहीं है, जब भी प्रमोशन होता है तो सब लोग सोचते हैं अरे इसका प्रमोशन हो गया अभी तो उसका ज्यादा पैसा आ गया, लेकिन जिनका प्रमोशन होता है वो एक्सपीरियंस करते हैं कि हमारी तंगी और बढ़ गई, स्कैर्सिटीज और बढ़ गई है, तंगी और बढ़ गई है। जानते हैं कैसे, क्योंकि जैसे ही प्रमोशन बढ़ता है स्टेटस बढ़ जाता है, उस स्टेटस को मेंटेन करने के लिए सब चीज बढ़ जाती है। पहले स्कूटर पे जाते थे तो अभी कार में जाना पड़ेगा क्योंकि मैनेजर बन गए, पहले दो रूम के फ्लैट में जाते थे तो अभी बंगले में रहना पड़ेगा। तो एक्चुअली सब लोग सोचते हैं प्रमोशन हो रहा है लेकिन वास्तव में क्या होता है, उनको और तंगी होती है। दिस इज व्हाट हैपेंस। तो आप लोग यहां पर विद्या सीखिए, ये वास्तव में विद्यानगर होना चाहिए, वल्लभ विद्यानगर। वल्लभ का मतलब समझते हैं क्या है, तो भगवान कृष्ण का एक नाम है वल्लभ, गोपी जन वल्लभ, जो गोपियों के प्रिय हैं भगवान श्री कृष्ण। तो वल्लभ विद्यानगर मतलब जहां पर भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करने की विद्या सिखाई जाए, जो हमारे वास्तविक प्रेम पात्र हैं। आप सब लोग प्रेम करना चाहते हैं, एवरीबडी इन दिस वर्ल्ड वॉन्ट्स टू लव समवन। ये कोई ऐसा नहीं कि आप में कोई एनामोली है। आप सोचिए तो ये भौतिक जगत में प्रेम कितनी फिल्म, सब फिल्म तो ऐसी बनती हैं, लव अफेयर्स, सबका दिमाग में यही घुसा है जाने अनजाने हाउ टू लव। तो ये लव का ओरिजिन कहां से है, ये कहां से आया लव? एवरीबडी वॉन्ट्स टू लव। इवन शेर भी जो होता है वो भी अपने बच्चों को प्रेम करता है, कितना फेरोशियस एनिमल है, लेकिन उसके अंदर भी अपने बच्चों के प्रति कम से कम प्रेम भाव होता है ना। तो ये सब प्रेम भाव हमारे सबके अंदर है। वी वॉन्ट टू लव समवन अनलिमिटेडली। हम किसी को चाहते हैं, कोई हमारा ऐसा प्रेम पात्र मिल जाए हमको जिसको अपने को निछावर कर सके, जो हमारे साथ प्रेम को रेसिप्रोकेट कर सके परफेक्टली। लेकिन क्या हमारी वो खोज कभी पूरी होती है? कभी नहीं होती, क्योंकि नोबडी इज परफेक्ट। कोई हमारे प्रेम को पूरी तरह से आदान प्रदान नहीं कर पाता है। आप लव मैरिज करते हैं, मैरिज के बाद में पता लगता है कि सपनों की रानी तो नहीं है, वो केवल सपने ही थे। सो वी आर ऑल सर्चिंग फॉर वन पर्सन, वो हमारे सपनों का राजा हो, रानी हो, राजा जो भी। एक्चुअली वी आर ऑल प्रकृति बाई नेचर। तो वास्तव में वल्लभ विद्यानगर है वो जो अल्टीमेट सर्च है हमारी प्रेम पात्र को ढूंढने की, उसके लिए हमको प्रशिक्षित करने की, कि ये कृष्ण जो है ये है वो हमारे सभी के प्रेम पात्र, अवर रियल ऑब्जेक्ट ऑफ लव, जिनसे हम संपूर्ण रूप से संतुष्ट हो पाएंगे उनके साथ अपना संबंध स्थापित कर लेने पर। तो ये रियल एजुकेशन है, वास्तविक विद्या। और जो आप विद्या जो कमाई के लिए है, जीविकोपार्जन के लिए जो विद्या है, दैट इज ओके। अभी आज की सोसाइटी ऐसी है कि उसके लिए आपको इतना पढ़ना पड़ता है, अदरवाइज ट्रेडिशनली जीविकोपार्जन के लिए पढ़ाई था ही नहीं। कॉलेजेस वर नॉट मीन्ट फॉर टेक्निकल एजुकेशन। ये तो घर में रहते हुए अपने पिताजी से, अपने चाचा से, दादा से, परिवार से खेल खेल में बच्चे सीखते थे कि अपनी जीविका कैसे कमानी है। आज जब बच्चे का जन्म होता है तो माता पिता वो बच्चे को क्या बोलते हैं, बेटे तुम्हें अपने आप कमाना है, अपने आप पैर पे खड़ा होना है, हमारे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है, अपने आप तुमको अपना जीवन बनाना है। करेक्ट। आज जो आप कर रहे हैं आपकी बुद्धि के अनुसार ही प्राप्त कर रहे हैं। और तो जो भी बच्चा आता है इस जगत में पूरी तरीके से अनप्रोटेक्टेड आता है, ही हैज टू डू एवरीथिंग हिमसेल्फ, सब कुछ सीखना है, सब कुछ पूरे संसार में। लेकिन हमारी जो वास्तविक वैदिक संस्कृति रही है तो उसमें सरल जीवन था और सरलता से अपनी जीविका का काम पूरा हो जाता था। कोई कृषक है, खेडूत है, तो उसका बच्चा, वो ये एग्रीकल्चर कॉलेज नहीं थे पहले, करेक्ट, देयर वाज नो नीड ऑफ एग्रीकल्चर कॉलेजेस। एग्रीकल्चर इज लर्न्ड बाय फादर हु इज एन एग्रीकल्चरिस्ट। पिताजी जो खेडूत हैं उनसे सीखना है कैसे खेती करना है, उसके लिए कॉलेज आने की क्या जरूरत है? कॉलेज में क्या सिखाया जा रहा है, वो कैसे कमर्शलाइज्ड खेती करना है, पैसे कमाना है खूब, उसकी जरूरत नहीं है अगर सादा जीवन होगा तो। तो आप सोचिए, बचपन से ही किसी को चिंता की जरूरत ही नहीं है कि मुझे क्या करना है। आज आपको 25 साल के बाद ही पता नहीं कि आपको क्या करना है। कितने स्टूडेंट हैं यहां पर जो लोग MBBS की तैयारी किए लेकिन MBBS में सिलेक्शन नहीं हुआ, तो आज BSc कर रहे हैं। BSc में ब्रांच चाहते थे ये, लेकिन हुआ ये। बहुत सारे स्टूडेंट होंगे, इंजीनियर बनना चाहते थे नहीं बने, डॉक्टर बनना चाहते नहीं बने, पूरा कई साल तक ड्रीम देखते रहे, पता लगा फिर वो नहीं हुआ। एक स्टूडेंट है हमारे, नाउ ही इज डूइंग नर्सिंग, तो वो कह रहे मैंने कभी चाहा नहीं कि मैं नर्सिंग में, लेकिन और कुछ ऑप्शन था ही नहीं तो नर्सिंग आना पड़ा। आप सोचिए पूरा जीवन उसको एक ऐसी चीज करनी पड़ेगी जो उसकी कोई इच्छा नहीं, सो हाउ विल ही एंजॉय वर्किंग दैट, इट विल बी अ बर्डन थ्रू आउट द लाइफ। तो ये आधुनिक हमारी सभ्यता है जिसमें हमको 25-30 साल तक भी पता नहीं कि मेरा क्या होगा, मैं कहां जाऊंगा, क्या लाइन करूंगा, कुछ नहीं पता। तो मेटेरियल एजुकेशन, मेटेरियल स्थिति भी आज हमारी बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना ली है, बट एनीवे इमीडिएटली यू कांट डू मच अबाउट इट। लेकिन वास्तव में ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हमारी जो सब आधारभूत आवश्यकताएं बड़े आसानी से भगवान ने ऑलरेडी व्यवस्था की है। आप सोच रहे हैं हमें अपने पैरों पर खड़ा होना है, हमें कुछ कमाने का साधन ढूंढना है, क्योंकि आपकी एजुकेशन ने आपको सिखाया है कि जब तक आपके पास डिग्री नहीं होगी आप अपने खाने भी नहीं खा सकते, आप दूसरों पर निर्भर हैं। डिग्री लेने के बाद आप क्या करेंगे? दुकान दुकान जाएंगे, प्लीज गिव मी जॉब एप्लीकेशन, प्लीज गिव मी जॉब, प्लीज गिव मी जॉब। और हमारी सभ्यता के अंदर जॉब, नौकरी करना, दैट वॉज द फोर्थ क्लास थिंग। लास्ट नौकरी, इंडिपेंडेंट है, यू शुड बी इंडिपेंडेंट, क्यों किसी पर निर्भर हो? लेकिन आज आप, मुझको बड़ा जॉब मिल गया। बड़ा जॉब मीन्स यू मे हैव इंस्टेड ऑफ वन मोबाइल टू मोबाइल्स, बट यू हैव टू ऑलवेज कीप इट स्विच्ड ऑन, करेक्ट? बिकॉज द कंपनी हैज परचेज्ड यू 24 आवर्स एवरी डे एवरी मंथ थ्रू आउट द ईयर। 24 आवर्स यू हैव अ जॉब, तो आप वो खरीद लिया है, 12-14 घंटे तो है ही, लेकिन जब काम होगा तो रुकना पड़ेगा, जब चाहेंगे हम तब रहना पड़ेगा, तो क्या जीवन है? अच्छा जॉब मीन्स ज्यादा गधा मजूरी, ये है डेफिनेशन अच्छे जॉब की। तो ये कॉम्प्लिकेटेड सोसाइटी हम लोगों ने बनाई है, इसलिए जितना अधिक हम अपनी अनावश्यक आवश्यकताओं को बढ़ाएंगे उतना ही हम अपने जीवन को कॉम्प्लिकेट करेंगे और दुखी रहेंगे। इसलिए भगवान कह रहे हैं यहां पर एक सरलता, एक ज्ञान का अंग बताया है, सरलता, सिंप्लिसिटी। इफ यू आर सेटिस्फाइड बाय सिंपल लिविंग, अपनी आधारभूत आवश्यकताओं को पूरा करके यदि आप संतुष्ट हैं, तब आपको दूसरे पर निर्भर होने की आवश्यकता नहीं है। खाना, दूध, कपड़े, सिंपल क्लोथिंग, क्या जरूरत है 20-20 जोड़ी कमीज, 20-20 जोड़ी पैंट और 20-20 जोड़ी जूते की? एक टाइम में एक ही जोड़ी जूता पहन सकते हैं ना, और कौन है जो आपके जूते पे ध्यान देगा? किसको पड़ी आपके जूते पे? सब लोग सोचते हैं, सब पूरा संसार मेरे को देख रहा है। जब आप बाहर निकलते हैं सब सोचते हैं, ये सब गर्ल्स बॉयज, एवरीबॉडी इज लुकिंग एट मी। सो वेदर दे लुक एट यू और नॉट लुक एट यू, हाउ डज इट मेक डिफरेंस? वो 30 जोड़ी जूते संभालने के लिए कितनी जगह चाहिए, कितना पैसा खर्च करना पड़ता है, क्या प्रॉब्लम है? एक या दो जोड़ी कपड़े होने में क्या प्रॉब्लम है? सो आपकी जो ड्रीम्स हैं वो बड़ी बड़ी ड्रीम्स होंगी, लेकिन वही आपके कष्ट का कारण बनेगा। दिस अनलिमिटेड डिजायर, दिस लस्ट, ये लोभ, काम, ये कभी आपको शांत नहीं बैठने देगा। हमारे वैदिक संस्कृति के अंदर एक व्यक्ति है जिसकी आधारभूत आवश्यकताएं पूरी हो रही हैं और वो संतुष्ट है, तो वो अच्छा है। और दूसरी तरफ आज का आदमी है जिसके पास करोड़ करोड़ रुपए है लेकिन वो संतुष्ट नहीं है, उसे और अजब रुपए की इच्छा है, तो कौन सी सिचुएशन ज्यादा अच्छा है? करोड़ रुपए होने पर भी संतुष्ट नहीं है। देखिए यहां पर कितने बड़े बड़े इंडस्ट्रीज हैं, यहां पर जो जितना बड़ा इंडस्ट्री है वो उतने ज्यादा बिजी, करेक्ट? क्यों? क्योंकि इस बड़े बिजनेस को मेंटेन करना और इसकी और आगे इच्छा है, आज करोड़ है तो कल और 2 करोड़ होना चाहिए, 50 करोड़ होना चाहिए। सो ही विल नेवर बी सेटिस्फाइड, एंड इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड हाउ कैन यू बी हैप्पी? अगर आप संतुष्ट नहीं है तो आप कभी सुखी नहीं हो सकते हैं। इसलिए ये ज्ञान है, सरलता में संतुष्ट होना सीखना, टू बी सेटिस्फाइड इन सिंपल। वी विल हैव क्वेश्चन आंसर आफ्टर दिस क्लास। जो हम भुलाते जा रहे हैं, सोचिएगा इस विचार पे, इस प्रश्न पे विचार कीजिएगा। इफ यू लर्न दिस सिंप्लिसिटी, हाउ टू बी हैप्पी सेटिस्फाइड इन द सिंपल सेटिंग्स, देन यू विल बी इंडिपेंडेंट, यू विल नॉट बी डिपेंड अदर्स, एंड यू विल बी पीसफुल, एंड सो यू विल बी हैप्पी। और फिर ये तो केवल भौतिक स्तर है, अंततः क्योंकि हम आत्मा हैं तो वो शारीरिक आवश्यकताओं का आसानी से पूरा कर लेने पर फिर हम जो हम, क्योंकि हमारा समय बचेगा, शक्ति बचेगी, फिर हम समझें कि आत्मा की संतुष्टि किस चीज में है। आज आत्मा के विषय में सोचने का टाइम है, बुद्धि है। जो आदमी दिन रात केवल काम वासनाओं के विचारों से भरा हुआ हो, उसके मन, उसके बुद्धि में कभी भगवान का विचार नहीं आ सकता, वो नहीं समझ सकता कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, क्योंकि दिमाग के अंदर गोबर भरा हुआ है। ये काम वासना जानवर के स्तर पर हमको ले आती है, क्या जानवर समझ सकते हैं भगवान को? तो जिस, जो आदमी मनुष्य होने पर जानवर जैसा जीवन जी रहा है, वो भी भगवान को नहीं समझ सकता। इसीलिए आप देखिए तो जो जितना ज्यादा एजुकेटेड है उसको भगवान के विषय में सुनने में उतना ही कम इंटरेस्ट है, समय भी कम है और इंटरेस्ट भी कम है। या अहंकार है, भगवान क्या, भगवान हम ही भगवान है, साइंस भगवान है, भगवान क्या है, अहंकार क्या है, साइंस बहुत छोटा सा एक, जैसे बच्चे वो घर बनाते हैं समुद्र में और बड़े खुश होते हैं हमने घर बना लिया, लेकिन बड़े लोग समझते हैं क्या है, खेल है। तो ये साइंस क्या है, एक खेल, खिलौना खेल रहे। एक छोटा सा यान हवा में उड़ा दिया, खुश हो गए, ओ साइंस इज डेवलपिंग। सो मेनी बर्ड्स आर फ्लाइंग एवरी डे, पक्षी जन्म से ही उड़ना सीख जाता है। आप सोच रहे हो हमने एक यान बना दिया, साइंस इज एडवांसिंग। एक अगर लास्ट टाइम बोला था मैंने शायद, यदि ये कुत्ता भोंक रहा होगा, ये एक साइंटिस्ट ने बोला है कि हमारी साइंस क्या है कि यदि ये कुत्ता भोंकेगा सड़क पे तो कोई ध्यान नहीं देगा, लेकिन एक आदमी कुत्ते की तरह से भोंकना शुरू करेगा तो वहां लोग पैसा देकर के उसको देखने आएंगे। तो ये साइंस है कि जो प्रकृति सहज रूप में कर रही है हर रोज, यदि हम उसको करते हैं तो हमें नोबेल प्राइज मिल जाता है। हम सोचते हैं वो बड़ा काम हो गया, टेस्ट ट्यूब बेबी, जीवन उत्पन्न कर दिया। हम जीवन उत्पन्न अभी तो किया नहीं है, हम जीवन उत्पन्न करेंगे। तो अगर ऐसा ही है तो हर माँ बाप को नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। हर माँ बाप तो जीवन उत्पन्न कर रहे हैं, हर माँ बाप तो संतान उत्पन्न कर रहे हैं, सो गिव देम द नोबेल प्राइज। माँ बाप नहीं, वो चूहा भी, ही इज ऑल्सो प्रोड्यूसिंग लाइफ। सो वॉट इज द क्रेडिट ऑफ साइंस? ऑलरेडी प्रकृति भगवान तो वो सब आराम से कर रहे हैं। आप एक टेस्ट ट्यूब बनाने के लिए इतना प्रयास कर रहे हैं, अरे देर आर लैक्स एंड लैक्स ऑफ टेस्ट ट्यूब्स, नेचुरल टेस्ट ट्यूब्स, वुम्स, गर्भ। तो वो एक टेस्ट ट्यूब बनाने में क्या क्रेडिट है? करोड़ों करोड़ टेस्ट ट्यूब जहां एग्जिस्ट करती हैं उसको बनाने वाले को सोचो। Why don't you give credit to the one who has made those millions of test tubes which you are just trying to imitate and very bad copy? आदमी की जो भी कॉपी है, जिस भी इमिटेशन कर रहा है, वेरी बैड कॉपी। आप देखो एयरप्लेन है, कितने एयरप्लेन क्रैश होते हैं, क्या कभी आपने मक्खियों क्रैश होते देखा है? मच्छरों को क्रैश होते देखा है? कितनी छोटी सी ब्रेन है उनकी, दिखती भी नहीं है ब्रेन, बट दे विल नेवर क्रैश। वॉट अ वंडरफुल प्रोग्राम। पर उसको उसके बारे में नहीं सोचेंगे, अपना ही जो प्लास्टिक का एरोप्लेन बना करके बड़े खुश हो जाएंगे। सो दिस इज अ साइंस। बट लेकिन हमको अहंकार, वो साइंस पढ़ पढ़ के साइंस इज गॉड। सो साइंस, सो बाई दिस एजुकेशन वी शुड नॉट बिकम फूल्स, वी शुड अंडरस्टैंड दैट हु इज गॉड एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड हिम। भगवान कौन है, हमको समझने का प्रयास करना चाहिए, वही ज्ञान है। तो अंततः ज्ञान है माम चयो अव्यविचारिणी भक्ति। ज्ञान का जो केंद्र है वो है अपने और भगवान के बीच में शाश्वत संबंध को समझना और उसको पुनर्जागृत करना, उसमें स्थापित होना, ये वास्तविक ज्ञान है। तो इसलिए आप यहां विद्यानगरी में आए हैं तो वो ठीक है, दुर्भाग्य से आज की स्थिति ऐसी है कि आपको सिंपल अपने जीविका कमाने के लिए भी इतना कठोर परिश्रम करना पड़ता है। ये एक और बात है, ये एडवांसमेंट है। एडवांसमेंट होना चाहिए खाने की समस्या इजी हो, तो आज खाने की समस्या बढ़ रही है। पहले 12th करके जॉब मिल जाता था, तो आज BSc करके भी जॉब नहीं है, इंजीनियरिंग करके भी जॉब नहीं। तो एडवांसमेंट हो रहा है कि डिग्रेडेशन हो रहा है? और वो छोड़ो, जानवरों को तो +2 करने की या पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, उसको तो हमेशा आराम से खाना मिल जाता है। सो यू टेल मी व्हाट इज एडवांसमेंट, व्हाट इज रियल नॉलेज? तो हमको, हम मनुष्य हैं, ज्यादा बुद्धि है, तो हमको अपनी समस्याओं को कम करना चाहिए कि बढ़ाना चाहिए? कि जानवरों खाने की समस्या नहीं है, जानवरों में आपने देखा है कभी पॉपुलेशन प्रॉब्लम, खाद्य समस्या, इतने सारे मच्छर गरीबी की रेखा से नीचे हैं, हमें अमेरिका के मच्छरों से के द्वारा आयात किया जा रहा है उनके लिए खाना भी, कभी आप देखा है सर? करोड़ों करोड़ों मच्छर होंगे, कोई भूखा नहीं होगा आपसे, लेकिन आदमी की बुद्धि इतनी डेवलप्ड है कि उसके ऊपर प्रॉब्लम आ गई है कि खाने को नहीं आदमी के पास। तो हम मच्छरों से भी गए गुजरे हैं एजुकेशन सिस्टम की वजह से। तो वो बुद्धि को ठिकाने लगाने के लिए भगवद्गीता है। तो इसलिए आप लोग रेगुलरली आइए और ये बुद्धि को वॉश कीजिए, ब्रेन वॉश। कई लोग आपके मित्र बोलेंगे इस कौन में जाके आपको सभी ब्रेन वॉश कर देंगे, तो ब्रेन वॉशिंग की जरूरत तो है ही। अभी आप लोग कीचड़ में जा रहे हैं, पैर गंदा हो गया है तो वॉश करना पड़ेगा ना पैर मंदिर में अंदर आने के लिए। तो अभी सबकी ब्रेन ये सब गंदी हो गई है, ये सब टीवी देख देख के, जगत गुरु मिस्टर टीवी, तो वो सब देख देख के सब इतनी जो गंदगी है उसको कौन धोएगा। तो यहां पर आप लोग आएंगे तो यहां भगवान श्री कृष्ण की दिव्य वाणी से वो सब जो कचरा घुसा हुआ है वो सबको वॉश करने की जरूरत है, जिससे क्लियर थिंकिंग हो, सही क्या है गलत क्या है उसकी पहचान आप लोग कर सकें, आपके लिए बेनिफिट में क्या है उसको जान सके रियल बेनिफिट में। तो इसलिए यस, दिस इज इंस्टीट्यूट फॉर ब्रेन वॉशिंग बिकॉज इट नीड्स वॉशिंग। ब्रेन वॉशिंग इस तरह से नहीं कि यहां पर हम कुछ हिप्नोटाइज कर रहे हैं। कई लोग बोलते हैं वो ऐसा कुछ प्रसाद खिला देंगे तुम्हारा दिमाग खराब कर देंगे। क्यों भाई, वो दिमाग खराब होने से लोग सुखी होते हैं, तो तुम वो दिमाग खराब करना ही अच्छा है ना। अगर वो सोचें कि ये दिमाग को ब्रेन वॉश कर रहे हैं, और उस ब्रेन वॉशिंग से आप देखिए जो लोग यहां आते हैं दे डांस एंड दे आर वेरी हैप्पी। सो दिस इज गुड ब्रेन वॉशिंग इफ यू कैन बी हैप्पी इन योर लाइफ एंड नॉट ओनली जस्ट गुड लाइक नॉट हैप्पी लाइक कैट्स एंड डॉग्स बट ऑन ए वेरी जेंटल वेरी नाइस प्लेटफॉर्म। इंद्रिय संयमन एक और गुण बताया गया, ब्राह्मण के गुण बताए गए हैं, इंद्रियों पर संयम मन पर संयम। तो कौन सिखा रहा है आपको इंद्रियों पर संयम मन पर संयम, उल्टा इंद्रियों को संयमित करो मन को संयमित करो। सो दिस इज नॉट एजुकेशन, क्योंकि जब मन असंयमित होगा तो अंदर से ज्वाला अग्नि हार्ट विल बर्न। कितने सारे लिटरेचर आज मार्केट में और कितना प्रोपेगेशन बिकॉज आई हैव बीन इन दिस थ्रू दिस मेडिकल। तो हमको बताया गया कि प्रोपेगेट सेक्स एजुकेशन इन द कॉलेजेस, ओ वेरी ब्रिलियंट आइडिया, या सेक्स प्रोवोकेटिंग मैगजीन्स, डॉक्टर सीक्रेट्स फॉर बेटर सेक्स। व्हाट इज द नीड फॉर अ डॉक्टर फॉर सेक्स, अ डॉग इज नॉट गोइंग टू अ डॉक्टर फॉर सेक्स। एक कबूतर को जरूरत नहीं पड़ती डॉक्टर के पास जाने की, बट आपको डॉक्टर्स गाइड इज नीडेड फॉर सेक्स। सो यू आर वर्स देन अ डॉग एंड अ कैट। तो ह्यूमन लाइफ में डॉक्टर या लीडर या गुरु चाहिए, हाउ टू रिड्यूस दिस सेक्स लाइफ नॉट टू इंक्रीज दिस सेक्स लाइफ। इंक्रीज सेक्स लाइफ गो बिकम एन एनिमल। सो ये जो इंद्रिय को अनियंत्रित करना है, स्वच्छंद व्यवहार करना है, इससे मन हृदय सब जलता है, बर्न्स एंड यू आर ऑल फीलिंग दैट जो भी कर रहे हैं, ये अग्नि की तरह से जलेगा हृदय। कितने लोग यहां आते हैं दान पेटी में हमारे चिट्ठी रख के आते हैं, हे भगवान बचाओ ये काम वासना का भूत मेरे पर सवार हो गया है, ना पढ़ पाता हूं ना कुछ कर पाता हूं, क्या करूं, सब पैसे भी खत्म हो गए हैं, घर से पता लगा प्रॉब्लम आ रही, बेटे तुम्हारा पहले खर्चा 1000 रुपए था अभी 3000 हो गया, क्या कर रहे हो तुम, सो मैनी प्रॉब्लम्स। सो डोंट एंटर इन टू दिस फील्ड, बुद्धिमान बनो। ये सब जो प्रलोभन है ये सब मूर्ख लोगों के द्वारा दिए गए प्रलोभन है, जिसमें आप लोग अभी नए नए आए हैं तो उसमें फंस सकते हैं। तो ये सब बकवास है, ये सब प्रलोभन है जो आपको सुखी नहीं बनाएंगे, आपका जीवन नष्ट कर देंगे, फिर पछताओगे बस सिर पकड़ कर कैसे क्या किया यार मेरी बुद्धि मारी गई थी। तो उससे पहले भगवद गीता पढ़ना शुरू करो, समझो सही क्या गलत क्या है। अरे अभी आप लोग प्रश्न पूछ सकते हैं। यस, Yes.
लेकिन उसके लिए अपन सब कुछ छोड़ दे, जैसे कार लेना छोड़ दे, कैमरे की अलग अलग टेक्नोलॉजी का उपयोग करना छोड़ दे, मोबाइल का उपयोग करना छोड़ दे, हर चीज का उपयोग करना छोड़ दे, तो फिर उससे जो जो कार के प्रोडक्ट से जो लोग जुड़े हैं, जो कार बनाते हैं, जैसे 20,000 लोग दिल्ली में काम करते
हैं, बिग प्रॉब्लम,
तो ये सब बेरोजगार हो जाएंगे।
वेरी गुड। उनका प्रश्न है कि यदि सब मॉडर्नाइजेशन बंद कर दिया जाए तो सब लोग बेरोजगार हो जाएंगे जो इस मॉडर्न एडवांसमेंट में जो टेक्नोलॉजी क्रिएट करने पर बने हैं। तो एम्प्लॉयमेंट की समस्या, अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या, आप यदि स्टैटिस्टिक्स जानते हो पढ़े हो, आज ज्यादा है या जब लोग सरल जीवन जी रहे थे खेती करे तब ज्यादा थी? नहीं, आप पॉपुलेशन की बात, वो सेकंड चैप्टर कि मॉडर्न एडवांसमेंट से एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, पर कितने लोगों का एम्प्लॉयमेंट निकल रहा है? वो जो एक एक मशीन हजार हजार लोगों का काम करती है उसका क्या? आप स्टैटिस्टिक्स नहीं जानते हैं, आज भारत के अंदर एम्प्लॉयमेंट की समस्या, आज आप लोगों के लिए समस्या है। मैं यही तो कह रहा हूं कि आज आपको पता नहीं कि बीएससी के बाद आपको खाने को मिलेगा नहीं मिलेगा। पहले कहां समस्या थी? तो ऐसा तो नहीं होने वाला ना कि अचानक बस आप एक दिन अपना बैंक से रिजाइन करके चले जाएंगे। आई एम नॉट सेइंग दैट। आज की स्थिति को और जो आइडियल स्थिति थी उससे पहले कंपैरिजन करके पता लगाइए कि क्या स्थिति अच्छी थी, वहां से यहां तक कैसे आना है, दैट्स अ डिफरेंट क्वेश्चन। दैट विल टेक सम टाइम एंड देयर इज सम मैकेनिज्म हाउ टू गो बैक टू दैट। मैं ये तो आपको नहीं कह रहा हूं कि बस ओके आज से आप छोड़ दिया अभी, दिस इज नॉट द प्रपोजिशन, बट एटलीस्ट यू अप्रिशिएट द प्रॉब्लम्स जो क्रिएट हुई हैं सिंपल लिविंग से मॉडर्न लिविंग में आने के लिए की वजह से जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं, पहले उसको अप्रिशिएट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन राइजेस, हाउ टू ब्रिंग दिस बैक टू सिंपल, दैट्स अनदर क्वेश्चन। देन वी कैन अडॉप्ट इंटरमीडिएट स्टेजेस, करेक्ट, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट एटलीस्ट फर्स्ट अप्रिशिएट दिस, दैट वॉज बेटर, दैट इज बेटर। डू यू एग्री विद दिस? यस, और कोई प्रश्न? और कोई प्रश्न है किसी का? यस,
जैसे आपने बोला जो मॉडर्न एजुकेशन तो प्रॉब्लम्स तो है और उसको हम बैलेंस कैसे कर सकते हैं स्पिरिचुअल लाइफ में, क्योंकि उसको छोड़ भी तो नहीं सकते।
यस,
मॉडर्न एजुकेशन को छोड़ नहीं सकते।
या एक्चुअली अल्टीमेटली श्रील प्रभुपाद इस्कॉन फाउंडर आचार्य, सो उन्होंने ऐसे डिवोटीज एग्जाम्प्लीफाई करें सिंपल लिविंग को, गांधी जी का भी यही फॉर्मूला था। जब भारत हम स्वतंत्र हुए तब गांधी जी ने प्रपोज किया था वी शुड स्टे सिंपल, ग्राम्य जीवन ही होना चाहिए। आप जानते हैं वर्धा में सब जगह विनोवा भावे आल्सो, लेकिन नेहरू जी ने ही वॉज मेड इन ब्रिटेन, मेड इन इंग्लैंड नेहरू जी, नहीं इंडस्ट्रियलाइजेशन होना चाहिए, अदरवाइज गांधी जी वॉन्टेड सिंपल है, तो उसकी तरफ धीरे धीरे चलना चाहिए। तो बीच की स्थिति में क्या करें, वर्तमान स्थिति में क्या करें, तो उसमें ओके आप लोग कितना घंटा चाहिए आपको पढ़ने के लिए, तो समय निकालिए और ये भी पढ़िए जितना आवश्यक है, जितना जो इस समय की स्थिति है उसके अनुसार जो आवश्यक है उसको कीजिए। देयर इज नो अदर, गो इमीडिएटली, करेक्ट। ऐसा नहीं कि आप लेक्चर सुने और कल से आप स्कूल में भी जाना बंद कर दें, कॉलेज में जाना बंद कर दें, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। अभी फंसे हुए हैं, बट एटलीस्ट यू शुड अप्रिशिएट कि ये फंसे हुए हैं, कम से कम ये समझ तो होनी चाहिए, तभी तो आगे चल के विचार आए कैसे इससे निकलना है या और फंसना नहीं है। तो उसको ये विचार कम से कम आने के लिए समय देना चाहिए, पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए। ओके,
एक और जो लस्ट ऑफ अमेरिका, हम सबको पता है कि ये प्रॉब्लम है बट स्टिल वी आर इग्नोरिंग
बिकॉज वी आर एडिक्टेड, क्योंकि हम लोग आसक्त एडिक्ट हो गए हैं, जैसे कोई ड्रग एडिक्ट होता है ना, तो अभी वो उसको जानता भी है कि ड्रग लेने से मेरे को हानि हो रही है, मेरा शरीर दुबला होता जा रहा है, मेरा परिवार टूटता जा रहा है, लेकिन फिर भी वो विवश हो जाता है ड्रग लेने के लिए, एडिक्शन है। तो उसी प्रकार से ये मॉडर्न एडिक्शन है जिसको नाम दिया गया है फिलोसफर्स ने एफ्लुएंजा, ये भी एक प्रकार का इंटॉक्सिकेशन है एफ्लुएंजा, कि आपको जब हाथ पड़ जाती है लाइट में और इलेक्ट्रिसिटी और सब, तो आपको लगता है कि इसके बिना मैं जी नहीं सकता हूं, यू फील एडिक्टेड। तो उसको तोड़ने के लिए, जैसे एडिक्शन को तोड़ने के लिए क्या करता है ड्रग एडिक्ट को तोड़ने के लिए डॉक्टर, तो धीरे धीरे उसकी डोज कम करता है, धीरे धीरे उसको बाहर निकालता है। तो ऐसे ही ऑस्टेरिटी, सम ऑस्टेरिटी ग्रेजुअली, देन एंड साइमल्टेनियसली हियरिंग भगवदगीता, धीरे धीरे होगा। अंततः ये अनर्थ है, अननेसेसरी थिंग्स विच आर अटैच टू अस, अनर्थ निवृत्ति होगी भगवान की भक्ति से, सुनने से बार बार, जैसे आप लोग आज सुने हैं, सो इट विल हैव सम इंपैक्ट ऑन योर माइंड, on your consciousness, and then chanting, all this process will purify you from this contamination. Dehi Dehi Shuddhi Hoga. Hare Krishna.